अब आगे देखिए, एक बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है और वो क्या है, शराब और जुआ। अल्लाह के नबी सल्लम जिस माशरे में भेजे गए, शराब पानी की तरह पी जाती थी, कोल्ड ड्रिंक्स की तरह लोग पीते थे, मायूब नहीं समझी जाती थी, कल्चर का हिस्सा थी। क्या अहकाम थे? तदरीजन, ग्रेजुअली। अभी जो हुक्म हम पढ़ने लगे, ये पहला हुक्म है शराब की हुरमत के बारे में। पहले इससे मक्की सूरत में इशारा दे दिया गया, सूरत रूम में आता है गालिबन, कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो अक्लमंद उनको समझ आ गई कि देखना एक वक्त आएगा इस्लाम में शराब हराम हो जाएगी, इशारा समझते हैं। अब ये दूसरा मौका है, आइए पढ़ते हैं इसको, और इसमें बहुत बड़ा अमल है हमारे लिए। यसलूनक अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरु व मनाफियु लिन्नास। पूछते हैं शराब और जुए का क्या हुक्म है। देखिए ये पूछना कितनी बड़ी नेमत है। हकीकत यह कि जब अल्लाह की मार्फत आती है ना, अल्लाह की पहचान होती है, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा का शौक लग जाता है ना, तो फिर सवाल बड़े उठते हैं। तो शराब और जुए का सवाल पूछते थे, कहो इन दोनों चीज़ों में बड़ी खराबी है, अगरचे इनमें लोगों के लिए कुछ मुनाफे भी हैं, मगर इनका गुना इनके फायदे से बहुत ज्यादा है। क्या मुनाफे थे शराब और जुए में, क्या नफा है? तो इसके लिए समझिएगा, मक्का के लोगों का कल्चर क्या था, शराब पीते, फिर शराब के नशे में धुत होते, फिर उस नशे की हालत में जाकर खूब सदका करते। इसका वाक्य आपको एक सुना देती हूँ, हजरत हमजा का। एक दफा शराब पी और हराम नहीं थी तो पीते थे, मना जब नहीं किया तो पी ली, और उस शराब के नशे में चूर होकर जाके हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की एक ऊँटनी जो उन्होंने पाली हुई थी, कि इस बड़ी जब हो जाएगी तो इसको बेचकर या इसका गोश्त काटकर अपना वलीमा करूंगा, उन्होंने इस सोच के साथ वो ऊँटनी बांधी हुई थी। अब ये चचा थे, आपस में चचा भतीजे थे। हजरत हमजा ने शराब के नशे में जाकर उस ऊँटनी को जिबा किया और उसका गोश्त जाके सारा फकीरों में बांट दिया। सदका बहुत करते थे नशे की हालत में, क्योंकि वो फीलिंग ही खत्म हो जाती है ना कि लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो ऊँटनी सारी जिबा कर दी। अब वो तो एक अलग कहानी हुई कि हजरत अली बेचारे इनके साथ क्या बना, लेकिन जब शराब का नशा उतरता तो लोगों को खबर मिलती, आज शराब के नशे में उसने इधर इतना सदका दिया, इधर इतनी डोनेशन दी, इधर इतना फंड दे दिया। अब तारीफें शुरू होती, फिर कसीदे होते हैं। जब कोई बाद में उनसे कहता कि देखो शराब अच्छी चीज नहीं है वैसे, तो कहते देखो इतना बड़ा सदका हमने शराब पिए बगैर करना था, नहीं समझे? अब मैं इंग्लिश का एक जुमला बोलती हूँ, बच्चियों को तो जरूर समझ आएगा, फॉर ए गुड कॉज। आज लोग गलत से गलत काम करते हैं फिर कहते फॉर ए गुड कॉज। मसलन वो जलजला जदगान वालों के लिए फंड रेजिंग डिनर है, बस कुछ फनकारों को बुला के जरा नाच कूद लेते हैं, टिकट रखेंगे, पैसे जमा होंगे, जाके जलजला वालों की मदद होगी, ये है असल में। इधर याद रखिए, गलत तरीके से सही काम कभी नहीं होगा। लोग ये सोचते हैं कि हम नाफरमानी करें और उससे पैसा जमा करें और जाके उससे अल्लाह के दीन को प्रमोट कर दें या किसी इंसान की मदद कर दें, अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, जिसका नफा नुकसान से थोड़ा हो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद फरमाया, पूछते हैं हम राह खुदा में क्या खर्च करें, कहो जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत से जायद हो। अगर सिर्फ इस एक आयत को हम लें ना, तो फिर तो हम एक चवन्नी भी अपने घर में नहीं रख सकते। दोपहर का खाना खाया, जो बच गया सब दे दें, हालांकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ देखिए कि कुरान को समझने के लिए हमें दूसरी आयतें भी और हदीसें भी समझने की ज़रूरत है। हाँ, एक खूबसूरत असूल है जो आपके पास जायद है। चलिए आप और मैं भी थोड़ा सोच लें, क्या जायद है हमारे पास? काम करना चाहते हैं, पर मैंने काम दे दिया तो कल आपने आना कोई नहीं, और कह देंगे जी हम उस काम में लग गए थे तो आज का बारे मिस कर दिया। लेकिन रमज़ान से पहले ज़रा अपने किचन से लेके बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम पे एक नज़र ज़रूर डालें। अल अफ में क्या आता है, कौन सी चीज़ है जो मेरे पास ज़रूरत से ज़ायद है और इस्तेमाल भी कोई नहीं करती, सिर्फ एक हौका है, साल में एक दफ़ा कोई मशीन निकलती है उसको भी संभाला हुआ, ज़िंदगी में एक दफ़ा एक जोड़ा पहना था, अभी तक दे भी नहीं रहे और पहन भी नहीं रहे दोबारा। ज़िंदगी को बेकार चीज़ों के बोझ से आज़ाद कीजिए। अगर आप भागना चाहते हैं, हाथों में सामान के थैले हों तो भागना तो दूर की बात है, चला भी नहीं जाता। फस्तबिकुल खैरात की भाग दौड़ होती नहीं है जब तक हाथ दुनिया में भरे होते हैं। तो लिहाजा वन न गुमिले ही तुक शर उनको सोचे और एक्स्ट्रा चीज़ें दे दें। किसी की बात मुझे अच्छी लगी और मैं हमेशा ही कोट करती हूँ। उन्होंने कहा, अगर कोई चीज़ तुम्हारे पास है और पिछले 1 साल में तुमने उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो मान लो कि वो तुम्हारी नहीं है, उसकी ज़रूरत किसी और को है, दे दो उसको। सिर्फ हम शायद ज़रूरत पड़ जाए, शायद रख लूँ, और किसी को देने भी लगे ना, फिर भी उसमें से दुपट्टा निकाल लेते, नहीं शायद ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा, कई साथी हैं, अब आप लोग शर्मिंदा ना हो, मैं पूछ लूँ एक सवाल, आप में से किस किस ने अभी तक अपनी शादी का जोड़ा संभाला हुआ है? माशाल्लाह। और किस उम्मीद पर संभाला हुआ है? खुद तो उसमें पूरे ही नहीं आते अब। संभाला क्यों हुआ पता? बहू को पहनाएंगे। पहले कहते हैं बेटी को पहनाएंगे, बेटी पहनती है, कहते रखें आप मुझे वो 5 लाख का जोड़ा ला के दें, बुटीक में पड़ा हुआ। अच्छा, बेटी इनकार कर दे, फिर कहते नहीं ये ऐसे सर पे चढ़ी हुई है, बहू को पहनाऊंगी। अब बहू ने जब कहने अम्मा जी ने आज से 20 साल पुराना जोड़ा निकालना मेरे लिए, वो शादी से इनकार कर देगी। आप देखिए कि चीजों की जगह दिल नहीं है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, आप इस्तेमाल करें, जो इस्तेमाल करते हैं वो रखिए। आप हीरे मोती पहने, आप लाखों के जोड़े पहने, पर पहने, लेकिन जो चीजें आपने हैंग की हुई है, बेचारों को सूली पे चढ़ाया हुआ है, उसको उतार दे, इससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए साफ साफ अहकाम बयान करता है, शायद कि तुम दुनिया और आखिरत दोनों की फिक्र करो। इसको हाईलाइट करें, दुनिया और आखिरत की फिक्र क्या है, वरना को मिलेगी तो शरून। अपने से पहले अपनी चीजें कहीं भेज दें, इंशाल्लाह उधर जाने को खुद ही दिल करेगा। पूछते हैं यतीमों के साथ मामला क्या किया जाए? कहो, जिस तर्ज अमल में उनके लिए भलाई हो वही इख्तियार करना बेहतर है। अगर तुम अपना और उनका खर्च और रहना सहना मुश्तरक रखो तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आखिर वो तुम्हारे भाई बहन ही तो हैं। बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर रोशन है। अल्लाह चाहता तो इस मामले में तुम पर सख्ती करता, मगर वो साहिब इख्तियार होने के साथ साहिब हिकमत भी है। यानी यहाँ यतीमों की बात पे इशारा है, इस पे हम सूरत निसा में इंशाल्लाह बात करेंगे, वहाँ काफ़ी डिटेल है। लेकिन अब यहाँ से आप आयत का नंबर नोट कर लीजिए, आयत नंबर 221। यहाँ से अब बाज़ाब्ता तौर पर आइली ज़िंदगी, आइली ज़िंदगी क्या होती है? घरेलू ज़िंदगी के मसाइल हैं जिसमें रिश्ते नाते निकाब तलाक और इद्दत, इस तरह के इश्यूज़ हैं, और असल में सबका सिरा आपस में जुड़ा हुआ है। कोशिश करूँगी कि जहाँ तक बात करके फ़ायदा हो आपसे, उसको साथ जोड़ दूँ। पहला हुक्म, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना वला मतु मोमिनतुन खैरु मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम। तुम मुशरिक औरतों से हरगिज निकाह न करना जब तक कि वो ईमान ना ले आए। एक मोमिन लौंडी मुशरिक शरीफ जादी से बेहतर है अगर जो वो तुम्हें बहुत पसंद हो। यहां पे रुकिए जरा, मर्दों को क्या कहा कि तुम्हें शादी करनी है तो शिर्क करने वाली औरतों से शादी ना करो। क्यों? इसलिए कि शादी जिससे की जाती है वो सिर्फ एक खूबसूरत डेकोरेशन पीस नहीं है जिसको आपने सामने रखना है और देखना है, और ना वो कोई बुत है जिसको आपने पूजना है। शादी दो खानदानों का जोड़ होती है, शादी एक नए घर की बुनियाद बनती है, शादी के इदारे में से बच्चे निकलते हैं और एक नई नस्ल परवान चढ़ती है। अब अगर एक ईमान वाला मर्द है और वो एक मुशरिक औरत से शादी कर लेता है, आप बताइए 24 घंटे के अंदर कितने कॉन्ट्राडिक्शन होंगे, कितना इख्तलाफ होगा। शादी हुई, घर में आए, शौहर बीवी साथ हुए, अल्लाह ताला ने कई कयूद और कई पाबंदियां रखी, एक कबूल कर रहा है दूसरा कबूल नहीं कर रहा, तहारत गुसल के इशू एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, फजर का वक्त हो गया एक नमाज के लिए उठ रहा है दूसरे को नमाज की परवाही नहीं है, नाश्ते के वक्त में हैम बर्गर आ गया और दूसरे के लिए प्योर चीज आ गई, इख्तलाफ। जुमे की नमाज के लिए एक जा रहा है दूसरा नहीं जा रहा, 24 घंटे में 20 दफा तो लड़ाई होगी। कब? जब वो मर्द सही मोमिन होगा। ये अलग बात है कि नाम का मुसलमान है तो फिर एक ही बात है। याद रखिए, जिस माशरे में नबी सल्लम भेजे गए थे वहां शिर्क आम था और हर तरफ कुफर था और नाशुक्री थी और खुदा फरामोशी थी। अब वहां ये सवाल उठना बहुत बड़ा सवाल था। अल्लाह ताला आज के दौर में भी नस्लों के ईमान को महफूज रखे। ये मौजू आगे आएगा, बस अभी आयतों तक रहें तो बेहतर है। दूसरा हुक्म, और अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों से कभी ना करना जब तक कि वो ईमान ना ले आए। पहले तो जरा आयत के अंदाज पे गौर कीजिए, जब एक मर्द की औरत से शादी की बात थी तो कहा ना करना, लेकिन जब एक औरत की किसी मर्द से शादी की बात थी तो कहा ना कराना। इससे पता चलता है कि औरत को अपना निकाह करने कराने के लिए किसी ना किसी वली की ज़रूरत होती है। यानी एक मर्द अपना निकाह खुद कर सकता है, करवा भी सकता है, लेकिन औरत को बाप भाई या वली की ज़रूरत होती है। एक मोमिन गुलाम मुशरिक शरीफ से बेहतर है अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। वजह क्या है? ये बेजोड़ शादियां क्यों ना करो? इसलिए कि ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह अपने इज़्ज़त से तुमको जन्नत और मगफरत की तरफ बुलाता है और अपने अहकाम वाज़े तौर पर इन लोगों के सामने बयान करता है। तवक्को है कि वो सबक लेंगे और नसीहत कबूल करेंगे। बेजोड़ शादी है, जोड़ ही नहीं बनता, और हमेशा याद रखिए गुनाह में कशिश ज़्यादा होती है। एक साथी ईमान पे है, दूसरा कुफर पे है, ये तो उम्मीद कम है कि दूसरे को भी ईमान मिल जाएगा, इसके चांसेस ज़्यादा है कि दूसरा भी उसकी तरफ लुढ़क जाएगा। ये बुराई की तरफ बढ़ते हुए कदम होते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा हुक्म ले के चलते हैं, हम इस पर इंशाल्लाह सूरत निसा में डिटेल से बात करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि रिश्ते करते वक्त मेयार दीन को बनाओ। आज हमारे इस कल्चर में जो अबतरी फैली हुई है ना, और जो नस्लों के बिगाड़ की आवाज़ें उठती हैं ना, उसमें एक बहुत बड़ी वजह बेजोड़ शादी है। अच्छी शरीफ बच्चियों की शादी करते वक्त माँ बाप ये तक नहीं पूछते कि लड़का नमाजी भी है कि नहीं, उसका रिस्क कैसा है। और इसी तरह अच्छे लड़के और लड़की के हुसन से मुतासर होकर शादी कर दी जाती है, तो बेजोड़ शादियों की कीमत पे आज बहुत कुछ बिगाड़ हो रहा है। अल्लाह ताला हमें उससे बचा कर रखे। उसके बाद एक बहुत पर्सनल इशू और दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब में उसका आना, और वो क्या है? हैज का इशू। वजह यह कि आगे तलाक के मामलात आ रहे हैं और शादी का इशू है, तो हलाल और हराम के मामले में इन चीज़ों को अल्लाह ताला पेश करते हैं, शर्म में कोई शर्म नहीं है। तो यहाँ कुछ बातें पीरियड से मुतल्लिक हैं, क्योंकि तलाक की जो इद्दत है उसमें एक पीरियड से दूसरे पीरियड के टाइम को काउंट किया जाता है। आइए पढ़ते हैं। वयसअलूनक अनिल महीद कुल हुवा अज़ा, पूछते हैं हैज का क्या हुक्म है, कहो वो एक गंदगी की हालत है, इसमें औरतों से अलग रहो और इनके करीब ना जाओ जब तक कि वो पाक साफ ना हो जाए, फिर जब वो पाक हो जाए तो इनके पास जाओ इस तरह जैसे कि अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। अल्लाह इन लोगों को पसंद करता है जो बदी से बास रहें और पाकीज़गी इख्तियार करें। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, मगर अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करो और अल्लाह की नाराज़गी से बचो। खूब जान लो, यह बाप भी जान लें, आपका थीम है पारे का, और वो क्या है? वालमुअन्नकुम मुलाकू, खूब जान लो कि एक दिन तुम्हें उससे मिलना है। और ये एहसास बंदे को सीधा रखता है। और ऐ नबी, जो तुम्हारी हिदायत को मान लें इनको फलाह और सआदत की खुशखबरी दे दो। यहाँ देखिए कि औरत के हैज के दिनों में उसकी और शौहर की कुछ हदों का तذکرہ किया गया। मैं कह सकती हूँ कि इससे ज़्यादा विमेन राइट्स की बात दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म ने नहीं की। एक खातून होने के नाते हर औरत जानती है कि ये दिन तकलीफ़ के भी हैं, अजियत के भी हैं, गंदगी के भी हैं। ये बात तो शायद माँ बाप नहीं अपने दामादों को बता सकते जो अल्लाह ने बता दी औरतों के हक में। किसी नॉन मुस्लिम ने कहा कि अगर मुझे यकीन ना होता कि ये कुरान मोहम्मद ने लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि ये भी दुरुस्त नहीं है, तो मैं ये कहता कि इस कुरान को लिखने वाली कोई औरत है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आपकी मेरी कितनी इज्जत की है, कितना हमें फ़ायदा दिया है। फिर आप देखिए कि इसमें औरत मर्द के ताल्लुक की लिमिट्स रखी गई। क्यों? कि एक औरत इंसान है, उससे जानवरों वाले काम ना करो, उसको जानवर ना बनाओ। तीसरी चीज़ आप देखिए कि इसमें औरत को खेती कहा गया, और कुछ औरतें इसमें बड़ी नाराज़ होती हैं। हमें खेती क्यों कहा गया? हमें फूल कहा जाता, तितली कहा जाता। चलिए थोड़ा सा इसको भी इंजॉय करते हैं। आप देखिए कि फूल क्या है, हर आज जाता उसको सूंघ सकता, उसकी खुशबू ले ली, भमरा आया बैठा उस पर उड़ के चला गया। आज वेस्ट ने औरत को फूल बनाया, फ्री सेक्स, लिविंग टुगेदर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडशिप, जिसका दिल चाहता है चंद दिन मज़ा उठाते हैं फिर चले जाते हैं। तितली कहा, वो तितलियां बन के उड़ती फिरती हैं, कभी एक के बाजू पे कभी दूसरे पैर पे, क्या है? चार किस्म के बच्चे हाथ में हैं, शौहर पास कोई नहीं। इसके बरक्स इस्लाम ने क्या खेती, खेती के साथ किसान का तसव्वुर आता है। हिफाजत का तसव्वुर आता है। किसान के लिए खेती बड़ी कीमती चीज़ होती है। असल में मर्द को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। सारी फिल्म इंडस्ट्री का थीम पलट जाता है अगर औरत को खेती बना दिया जाता है। चांद कहते हैं, चांद को हर एक देखता है। आप देखिए कि जो चाहे फायदा उठा ले, आज का पूरा कल्चर इसी कल्चर पे है। तो खेती से फसल मिलती है, बीवी से औलाद मिलती है। किसान हमेशा अपनी खेती को देख के खुश होता है। इशारा दिया गया कि अपनी बीवियों को देख कर खुश हो, दूसरों की बीवियों को देख कर नहीं। अपनी बीवियों को बंजर ना बनाओ, उनसे औलाद हासिल करो। किसान भी अपनी खेती के अंदर हमेशा फसल चाहता है। फिर आप देखिए कि कोई किसान जो है वो अपनी खेती छोड़कर दूसरे की खेती पे मेहनत नहीं करता। यानी सेक में बीसियों चीज़ें हैं, जब हम डिटेल से पढ़ते हैं इस पे आधा पौना घंटा बात होती है। आप देखिए कि ये किसान पहले बीज डालता है, मट्टी नरम करता है, फिर बीज डालता है, फिर पानी देता है, फिर फसल आती है। शौहर और बीवी के ताल्लुक में ये सारे किनाए मौजूद हैं। आपने फरमाया कि अपनी बीवियों के एक पास एकदम न चले जाया करो, पहले उनका दिल नरम करो, उनको राम करो, उनके अंदर ख्वाहिश पैदा करो। आप बताइए ये बातें कौन दुनिया में बता सकता है। तो अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने ये सब कुछ बताया। लेकिन याद रखिए, जब दीन का इल्म नहीं होता तो बाज़ दफ़ा फिर जानवर भी वो काम नहीं करते जो काम बाज़ दफ़ा सिर्फ नफ्स की ख्वाहिशात की वजह से होता है। और सजा कौन भुगतती हैं? औरतें भुगतती हैं। तो इसके अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें इल्म हासिल करना है, क्या हलाल है क्या हराम है। इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा टॉपिक है। चूंकि आज तो ये सिर्फ इतनी सी बात है, तो मैं एडमिन से ख्वाहिश करूंगी कि आपको किताबु तहारा में से सिर्फ हैज के जो मसाइल हैं या जो इससे मुतल्लिक है उसका लिंक आज के लिंक के से भेजा दे, जब आपका दिल चाहे आप सुने। लेकिन आप सुनेंगे तो आपका दिल शुक्र के साथ भर जाएगा कि अल्लाह ताला ने हमारे इतने हकूक रखे हैं, लेकिन आज तक हमें इसका पता नहीं था। मुझे अपनी एक सिस्टर की बात याद आती है, जब हमने अपनी क्लास में, हम अपने हर कोर्स में वो बुक पढ़ाते हैं तहारत के मसाइल, तो जब हमने ये टॉपिक्स पढ़े तो एक सिस्टर खड़ी हुई और उन्होंने शेयरिंग की, और उन्होंने कहा कि मेरी शादी को शायद 25 साल हुए हैं, आज मुझे कुछ ऐसे मसाइल पता चले हैं जो मुझे आज तक नहीं पता थे। हलाल हराम जिंदगियां गुजर रही, गुना को सवाब बनाया हुआ, सवाब को गुना बनाया हुआ। कई जगह मर्दों को नाराज करते हैं हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। कई जगह उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं हालांकि हराम है। तो लिहाजा ये फर्ज है हर शादीशुदा औरत या हर वो बच्चा बच्ची जिसकी शादी होने वाली है, उनको ये सारे मसाइल मालूम होने चाहिए। वरना तो आप याद रखिए कि उसी का फिर असल आगे नुकसान औलादों की सूरत में होता है। तो फिर वही बात है कि खूब जान लो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलना है, और अल्लाह ताला हमें उसकी तैयारी करने की तौफीक दे। अल्लाह के नाम को ऐसी कसमें खाने के लिए इस्तेमाल ना करो जिससे मकसूद नेकी और तकवा और बंदगाने खुदा की भलाई के कामों से बाज रहना हो। अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुन रहे और सब कुछ जानता है। जो बेमानी कस्में तुम बिला इरादा खा लिया करते हो, इन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता। मगर जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो, इसकी बास पुरस वो जरूर करेगा। अल्लाह ताला बहुत दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है। जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक ना रखने की कसम खा बैठते हैं, इनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर इन्होंने रजू कर लिया तो अल्लाह ताला माफ करने वाला और रहीम है, और अगर उन्होंने तलाक ही की ठान ली हो तो जाने रहें कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। आप देखिए, अब इस एक आयत में औरत का एक और हक रखा। अरब लोग क्या करते थे, अपनी बीवियों को बेशुमार तलाकें देते थे। औरतों के पास किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं। साल खा साल शौहर अपनी बीवियों से नाराज रहते थे, ना उनके साथ ताल्लुक रखते ना उनको छोड़ते, जिसको आप कहते हैं कि ना रखेंगे ना छोड़ेंगे। अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ 4 माह की लिमिट दे दी। आज ये हक औरत को पता चल जाए, कुरान पढ़ के कई घर बच जाते हैं। एक मर्द सिर्फ 4 महीने तक अपनी बीवी से दूर रह सकता है। अगर नाराजगी के साथ, गुस्से के साथ वो कहता है कि ना तेरी साथ रहूंगा ना छोड़ूंगा, 4 माह के बाद उस औरत को पूरी इजाजत है, बैठ के बात करे। जरूरत है अगर बात करने की, नहीं है कह दे मुझे रुख्सत कर दो, नहीं देता जाके अदालत से खुला ले सकती है। ईला बोलते हैं इसको। आप देखिए कि आज 10-10 साल औरतें मर्दों के साथ जी रही हैं और एक घर में बिल्कुल कहना चाहिए कि अजनबियत की कैफियत है। ये वो चीजें हैं कि जो सोसाइटी भी नहीं आपको बताती, अल्लाह ताला इधर बताते हैं। आगे तलाक की बातें मैं कोशिश करूंगी इनको पढ़कर एंड पे एक समरी कर दूं आपके सामने। फरमाया, जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो 3 मरतबा यामे माहवारी आने तक अपने आप को रोके रखें। इस जुमले की वजह से यहाँ पीरियड्स की बात आई, क्योंकि इद्दत का ताल्लुक है पीरियड्स के साथ। और इनके लिए ये जायज़ नहीं कि अल्लाह ने इनके रहम में जो कुछ खल्क फरमाया, मुराद बच्चा है, इसे छुपाएं, इन्हें हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो अल्लाह और रोज़े आखरत पर ईमान रखती हैं, इनके शौहर ताल्लुकात दुरुस्त कर लेने पर आमादा हों, तो वो इस इद्दत के दौरान में इन्हें अपनी ज़ौजियत में वापस ले लेने के हकदार हैं। औरतों के लिए भी मारूफ तरीके पर वैसे ही हकूक हैं जैसे मर्दों के हकूक उन पर हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि मैं अपनी बीवी के लिए सजता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, खुशबू लगाता हूँ, फिर उसके पास जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी भी ये ख्वाहिश है कि वो मेरे लिए सजे, तो उसकी भी तो ये ख्वाहिश होगी कि मैं उसके लिए सजूँ। आप देखिए, दीनदार मर्द से ज़्यादा कोई अपनी बीवी को खुश नहीं रख सकता। अल्लाह ताला ने यहाँ उसी का इशारा किया। अलबत्ता मर्दों को इन पर एक दर्जा हासिल है और यह है, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह ने औरत मर्द के हकूक में 51:49 का रेशो इसीलिए रखा है कि मर्द का एक दर्जा ऊपर होगा, क्योंकि निकाह किया भी उसने था तो उसको तोड़ना या जोड़ना उसमें भी उसको अल्लाह ताला ने एक इख्तियार दिया। और सब पर अल्लाह गालिब इक्तदार रखने वाला और हकीम और दाना मौजूद है। तलाक का तरीका सुनिएगा, और जो हमारी सोसाइटी में तलाक का तरीका, अगर आप उसको इससे मैच करें तो हैरत गुम होती है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स और जो प्रॉब्लम्स और मसाइल लोग पूछते हैं मुख्तलिफ मीडियम्स के ज़रिए, वो तलाक के इश्यूज़ हैं। और साथ रहने वालों को और छोड़ने वालों को ये तक नहीं पता कि कैसे साथ रहना है और कैसे छोड़ना है। तो तलाक का तरीका यहाँ से हम देखेंगे। तलाक दो बार है, यानी जिस तलाक के बाद रुजू किया जा सकता है। फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से इनको रुख्सत कर दिया जाए। और रुख्सत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि जो कुछ तुम इन्हें दे चुके हो इसमें से कुछ वापस ले लो। हमारे यहाँ क्या होता है, उसको दिया तो छोड़िए, उसके मैके से आया हुआ जहेज भी रख लेते हैं, उसका जेवर वापस नहीं करते, जुल्म की हद है। अलबत्ता ये सूरत इससे मुस्तस्ना यानी एग्जेम्प्टेड है कि ज़ौजैन को अल्लाह के हदूद पर कायम ना रह सकने का अंदेशा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें ये खौफ हो कि वो दोनों हदूद इलाही पर कायम ना रहेंगे, तो इन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में कोई हर्ज नहीं कि औरत अपने शौहर को कुछ मुआवजा देकर अलहदगी हासिल कर ले। यानी जिस तरह मर्द तलाक दे सकता है, इसी तरह बामरे मजबूरी औरत भी तलाक हासिल कर सकती है। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद है, इनसे तजावुज़ ना करो। और जो लोग हदूद इलाही से तजावुज़ करें वही जालिम है। फिर अगर दोबारा तलाक देने के बाद शौहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी, तो फिर औरत इस पर हलाल ना होगी इल्ला ये कि इसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो इसे तलाक दे दे। तब अगर पहला शौहर और ये औरत दोनों ख्याल करें कि हदूद इलाही पर कायम रहेंगे, तो इनके लिए एक दूसरे की तरफ रजू कर लेने में कोई मुजायका नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं जो इन लोगों को हिदायत के लिए वाजे कर रहा है, जो इसकी हदों को तोड़ने का इंजाम जानते हैं। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और इनकी इद्दत पूरी होने को आ जाए, तो या तो भले तरीके से इनको रोक लो या भले तरीके से इनको रुख्सत कर दो। महज सताने की खातिर इन्हें ना रोके रखना, क्योंकि ये ज्यादती होगी, और जो कोई ऐसा करेगा दर हकीकत अपने आप पर ही वो जुल्म करेगा। अल्लाह की आयात का खेल ना बनाओ। कैसे? हलाला के नाम पर। एक औरत पहले बेचारी तलाक और इद्दत की मुश्किलात से गुजरे और उसके बाद दोबारा तुम उसको किसी और के हाथ लगा दो, ये बहुत मिसअंडरस्टूड टॉपिक है आज हमारी सोसाइटी में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, भूल ना जाओ कि अल्लाह ने किस नेमत उज़्मा से तुम्हें सरफराज किया। कौन सी नेमत? इस्लाम की नेमत, उम्मत मोहम्मदिया में से होने की नेमत। वो तुम्हें नसीहत करता है कि जो किताब और हिकमत इसने तुम पर नाजिल की है, इसका एहतराम मलहूस रखो। अल्लाह से डरो और खूब जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है। यहाँ पे हमारा आज का ये रुक का गोल पूरा होता है। खुलासे में एक बात कह देती हूँ कि ये इशू आपको सिर्फ इन आयतों को पढ़ने से समझ नहीं आएगा, इसके पीछे एक पूरा इल्म है। और फ़र्ज के दर्जे पे हर शादीशुदा जोड़े को ये इल्म हासिल करना। तो इस पे फिर आपके साथ इंशाल्लाह एक चीज़ शेयर करेंगे। एक टॉपिक है निकाह से तलाक तक, हम उसमें स्टेप्स में निकाह से लेके तलाक के बहुत सिंपल तरीके से छोटे छोटे जुमलों की सूरत में स्टेप्स देखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको फिर आज की चेक लिस्टों के साथ वो भेज देते हैं, जब सुनना चाहें बल्कि उसको सेव कर लें। और आपकी दोस्तों में, आपके फैमिली में कभी तलाक का इशू आए और आप सोचें कि जी आपसे सवाल पूछा जाए या किसी से, तो उससे पहले आप वो लेक्चर उनको सुनवा दें। इंशाल्लाह आपको हैरत होगी। मैंने जहाँ भी वो लेक्चर भिजवाया या जिसने भी सुना, वो हैरान होते हैं, कहते हैं रियली ऐसे है तलाक? हमने तो ये देखा है कि खड़े खड़े खाने में नमक तेज है, मियाँ साहब को गुस्सा आ गया, तलाक है तलाक है तलाक है। और यहाँ तक सुना कि बारिश वाली रात में अच्छे खासे मूड में खाना खाने के दौरान गुस्सा आया, तल्लाकें तीन थी और साथ ही कहा घर से बाहर चली जा तू, क्योंकि मैं दीनदार हूं और तू गैर औरत है तो तू मेरे साथ जा नहीं रह सकती। वो इस्लाम जो मुर्गी ज़िबा करते हुए भी कहता है एकदम गर्दन ना काटो, थोड़ी सी काट के छोड़ दो, क्या एक औरत को एकदम मिसिस से उठाकर वो बेवा और मुतलका की सूरत में बाहर खड़ा कर देगा? अक्ल को आती है बात? अल्लाह ना करे, मैं अपने ऊपर ही लेके बात करती हूँ कि जो मेरे पास मेरे शौहर की इज्जत, उनका प्यार, उनकी चीज़ है, अल्लाह ना करे घर जाऊँ और वो सब खत्म होके तो मुझे बाहर खड़ा करते हैं, दिल पे हाथ नहीं पड़ता? आज बहुत बड़ा जुल्म है। और याद रखिए, इस किताब से दूर रख कर हमने लोगों को इस जुल्म पे तैयार किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इल्म हासिल करने वाला बना दे। आयत नंबर 232, 232, वइज़ा तल्लक्तुमुन्निसा अफबलग़ना अजलहुन, जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको और वो अपनी इद्दत पूरी कर ले तो फिर इसमें माने ना हो, यानी रुकावट ना बनो कि वो अपने जेरे तजवीज़ शौहरों से निकाह कर ले जबकि वो मारूफ तरीके से बाहम निकाह पर राजी हो। तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत हरगिज़ न करना अगर तुम अल्लाह रोज़े आखिर पर ईमान लाने वाले हो। तुम्हारे लिए शाइस्ता और पाकीज़ा तरीका यही है कि इससे बाज रहो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। आप देखिए कि तलाक एक सोचा समझा फैसला होता है, इसके लिए बहुत पहले से सोचा भी जाता है, हर मुमकिन कोशिश भी की जाती है कि घर ना टूटे। इसके सारे तरीके सूरत निसा में अल्लाह सुब्हान तआला ने बयान भी फरमा दिए। उसके बाद अगर लगता है शौहर और बीवी को कि हम साथ नहीं रह सकते हर कोशिश कर चुकने के बाद, तो फिर अल्लाह तआला ने तलाक के तरीके को मुकम्मल होने के लिए 3 महीने का टाइम दिया, जिसमें हर वक्त एनी टाइम रुजू का इख्तियार भी मौजूद होता है। किसी वक्त भी अगर मर्द रुजू करना चाहे तो औरत इनकार नहीं कर सकती, किसी वली को पूछने की जरूरत नहीं, किसी बाहर के इंसान को बीच में आने की जरूरत नहीं। फिर 1 महीने के इंतजार के बाद दोबारा अगर वो कुछ बोल दे तो भी उसकी मर्जी है, ना बोले तो भी ठीक है। पूरा एक सर्टन खूबसूरत महजब और डिसेंट तरीका है तलाक देने का। ये कैसे हो सकता है कि इस्लाम ने हमें बाकी अहकाम तो इतने खूबसूरत दिए हों और तलाक इतने भोंडे तरीके से दे दें, खड़े खड़े किसी को बाहर निकाल दिया जाए। फिर उसके बाद अगर 3 महीने गुजार के जब लगा के बात नहीं बनेगी, उसके बाद जब शोहर बीवी जुदा होते हैं तो यकीनन देयर शुड बी सम रीज़न, औरत को भी पता होगा कोई वजह, मर्द को भी कोई पता होगा, तो फिर दोबारा किसी इस तरह की कोई कमी बेशी का कोई खतरा नहीं होता कि ओहो अब क्या करें, अच्छा अब किसी दूसरे मर्द से शादी कराते हैं इस शर्त पे कि 2 दिन के बाद वो तलाक दे दे, फिर पहले मर्द से निकाह कराया जाए। ये खेल लगता है, ये तो बच्चों वाला खेल है, ऐसे इस्लाम नहीं कहता। हत्ता कि यहाँ जो एक चीज़ अभी हमने पढ़ी है, मुझे पता है कि आपका फोकस नहीं हुआ होगा, लेकिन ये जुमले शायद किसी को आगे आने पे मदद दें। किसी ने 1 साल के दौरे कुरान को सुना उसके बाद हम तक पहुंचे, तो दौरे कुरान में अमूमन हर स्पीकर ही ऐसी बातों को सिर्फ तर्जमे से गो थ्रू करता है, क्योंकि ये ऐसा इशू ही नहीं है कि आपको 2-4 मिनट में समझाया जाए। लेकिन मैं शऊर के साथ ये जुमले इसलिए बोल देती हूँ कि रास्ता खुल जाए। जो जुमले आप बोलने लगी हो ये मैंने वहां भी बोल दिए, उसके बाद कोई इन जुमलों को ट्रेस करता करता हम तक पहुंचा, फिर उन्होंने पूरा इद्दत तलाक का ये तरीकाकार देखा पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह एक टूटता हुआ घर बच गया। यानी आज भी बहुत सारे टूटे हुए घर जुड़ सकते हैं अगर हमें अल्लाह ताला का ये तरीका समझ आ जाए। और वो बात जो बताने लगी वो क्या है कि अगर मर्द एक दफा तलाक देकर खामोश हो जाए, कुछ भी ना बोले, दोबारा 3 माह गुजर जाए तलाक फिर भी हो जाएगी, हो जाती है बिल्कुल, बीवी अलग मर्द अलग। बट इसमें फायदा क्या होता है कि जिंदगी में किसी मोड़ पे भी ख्याल आता है कि ये फैसला ठीक नहीं था, जिस शक की बुनियाद पे रिश्ता तोड़ा वो ठीक नहीं था, हालात बदल गए, तौबा कर ली, मर्द ने तौबा की, औरत ने, एनी टाइम किसी भी वक्त वो दोनों मियाँ बीवी का दोबारा निकाह किया जा सकता है बगैर किसी तीसरे मर्द के बीच में लाए, शर्त के एक दफा बोल के मर्द खामोश, 3 माह इंतजार करें। हत्ता कि अगर अगले महीने में दोबारा भी वो बोल देता है और फिर तीसरी बार नहीं बोलता और 3 माह गुजर जाते हैं, सूरत में भी ये मौजूद है। अब आप देखिए कि ये कितना बड़ा हक है लेकिन लोगों से गाफिल है। और ऐसी तलाक ही देनी चाहिए, इसको तलाक-ए- हसन कहते हैं। कुछ जरूरी तो नहीं होता कि 3 दफा तलाक तलाक तलाक, क्या लोग 3 तो नहीं, लोग तो 30 दफा भी बोल देते हैं। क्यों ये काम जब एक दफा करने से हो रहा है तो आपने उसको 3 दफा जरूर करना है। गर्दन काटी मुर्गी की, एक दफा छुरी चलाई गर्दन कट गई, तो क्यों जरूरी है कि आप उसको 10 दफा भी छुरी चलाए? तो ये मिसकॉन्सेप्शन है कि जब तक 3 दफा ना कोई बोल दे तलाक नहीं होती, ये गलत फहमी है हमारे कल्चर की। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये जो भी आयतें पढ़ी इसमें यही कहा है कि अगर एक तलाक या दो तलाकों के बाद मियाँ बीवी जुदा हो चुके हैं 3 माह इद्दत गुजरने के बाद, तो एनी टाइम जिंदगी में वह दोनों फिर सोचते हैं कि ठीक है वही अच्छी थी, वो कहती वही अच्छा है। कभी बच्चे बेबुनियाद बनते हैं। आप लड़की के घर वालों को, बाप को, भाई को कोई हक नहीं कि वो रोके, खबरदार अगर उधर गई, और ना लड़के के घर वालों को बीच में आने की जरूरत है कि जी ये तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो बहरहाल ये हमारा कल्चरल इशू तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अब आगे जो आया आता है इसमें यह कि तलाक हुई लेकिन बच्चा भी था, अब बच्चे के साथ क्या किया जाए? और बच्चा कौन सा है जो कि दूध पीता हुआ बच्चा है,